ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय क्रमांक 27 श्लोक नंबर 8। इस अध्याय का शीर्षक है इंद्र एवं सुरभि द्वारा प्रार्थना। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीशमे सति। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीशमे सति। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीशमे सति। ऐश्वर्य शासन के मद नशे में प्लुतस्य निमग्न रहने वाले कृत किया हुआ आगस अपराध ते आपको अविदुष न जानने के कारण प्रभावम दिव्य प्रभाव को क्षन्तुं क्षमा करने के लिए प्रभो हे प्रभो अथ अतएव अर्हसि आपको चाहिए मूढ़ मूर्ख चेतस जिसकी बुद्धि मा कभी नहीं एवं इस प्रकार पुनः फिर भूत होए मति ही चेतना ईशः हे प्रभु मैं मेरी असति अशुद्ध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे। ये श्लोक देवराज इंद्र द्वारा कहा गया। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर दी थी, किंतु इंद्र को अभी तक दंडित नहीं किया था। अतएव इंद्र भयभीत थे कि श्री कृष्ण किसी भी समय विवस्वान पुत्र यमराज को बुला सकते हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्धत व्यक्तियों को दंड देते हैं। इंद्र अत्यधिक भयभीत थे, इसीलिए उन्होंने दलील देते हुए क्षमा याचना की कि एकमात्र कृष्ण कृपा से ही वह शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वह इतने जिद्दी हैं कि केवल दंड से ही वह नहीं सुधर सकते। वस्तुतः इंद्र द्वारा दीनता के प्रदर्शन के बावजूद उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था। आगे चलकर इसी स्कंद में हम देखेंगे कि जब एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र के राज्य से एक पारिजात पुष्प लिया, तो बेचारे इंद्र ने भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखलाई। अतएव हम कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। हमें भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना नहीं चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। ये श्लोक जिसमें देवराज इंद्र सुरभि के साथ अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, और इन प्रार्थनाओं में दिख रहा है कि देवराज इंद्र को पश्चाताप हो रहा है जो गलती उन्होंने की, और कोई साधारण गलती नहीं थी। राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में वो कह रहे थे कि बहुत से असुर जो वृंदावन में आए, उनमें से बहुत कम थे जो ब्रजवासियों को मारना चाहते थे। अधिकांश जो असुर आए वो डायरेक्टली कृष्ण को मारना चाहते थे, और यहां पर इंद्र उन्होंने संवर्तक बादलों को भेजा केवल भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नहीं। संवर्तक बादलों को देवराज इंद्र ने कहा कि पूरे ब्रजमंडल को विध्वंस करो, ब्रज समुदाय को, गोप समुदाय को खत्म करो। तो उस प्रवचन में महाराज ये प्रश्न पूछ रहे थे कि अब सुर कौन है और असुर कौन है। तो यहां ये जो श्लोक हमने लिया है, इस 27वें अध्याय का 8वां श्लोक, ये बहुत ही विशेष श्लोक है, क्योंकि इसके अंदर देवराज इंद्र भगवान से कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, और बहुत बड़ी गलती हुई है, और आप कृपा कीजिए कि मैं आगे चलकर ऐसी गलती न करूं। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे। तो एक दृष्टिकोण से यह समझ में आ रहा है जैसे कि भगवान ने होने दी थी अशुद्ध, तो अब अशुद्ध न होने दे। इसलिए तात्पर्य में लिखा गया है कि इसी स्कंद में देवराज इंद्र आगे चलकर फिर से गलती करते। तो अभी थोड़ा परिवर्तन आया, हमारा डिस्कशन पिछले कुछ सेटिंग्स में क्या चल रहा है, परिवर्तन के ऊपर। तो परिवर्तन आया, परंतु परिवर्तन बहुत ही टेम्पररी था। अब ये एक और मुख्य मुद्दा समझने के योग्य है कि हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं हम लोग जो इतने सालों से मंदिर में आ रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया। आया है परिवर्तन, परंतु यहां पर जो सीखने योग्य बात है देवराज इंद्र से कि इसी स्कंद में अर्थात कुछ समय पश्चात, बहुत कम समय पश्चात, वही इंद्र वही कृष्ण के साथ एक और गलती करते। और कौन सी बात को लेकर? एक पारिजात वृक्ष को लेकर। अब हमें अचरज होता होगा कि यहां पर हम लोग भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए प्रण ले रहे हैं और यहां पर हैं देवताओं के प्रमुख इंद्र, एक पारिजात वृक्ष को नहीं भगवान को अर्पित कर सकते। और अर्पित करना तो दूर, वो तो है ही भगवान का, तो अर्पित क्या करेंगे। तो यहां पर सीखने योग्य ये बात है कि जब अहंकार का प्रहार होता है तो वो कौन सी वस्तु नगण्य है, कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है, अहंकार वो नहीं देखता। अहंकार केवल यही देखता है कि तुम्हारा महत्व कम हो रहा है, उसे कम ना होने दो। तो इसलिए हम ये जो कोट लेकर डिस्कशन प्रारंभ किए थे कुछ हफ्तों पहले, सिंपली गोइंग टू टेम्पल डजंट मेक यू अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एनी मोर देन सिंपली स्टैंडिंग इन अ मेडिकल कॉलेज मेक्स यू इनटू अ डॉक्टर। तो इस संदर्भ में हमने टेम्पल की परिभाषा समझी थी कि मंदिर में जब हम आते हैं तो क्या क्या हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा उत्तरदायित्व हम मंदिर से क्या प्राप्त करें, और मंदिर का उत्तरदायित्व कि मंदिर हमें क्या प्रदान कर दें। और हमारे पिछले सेटिंग में हमने इस एक स्लाइड के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटा चर्चा की थी, तो आज हम इसे आगे चलेंगे। राधानाथ महाराज का हमने वो वीडियो दिखाया था जहां महाराज ने परिवर्तन के विषय में कहा अपने स्वयं के जीवन के उदाहरण से कि उनके जीवन में जो परिवर्तन आया उसकी शुरुआत हुई इन 3 शब्दों से, आई एम विलिंग। और हमारे जीवन में भी यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शुरुआत हमको करनी है इन 3 शब्दों से, आई एम विलिंग। अब ये एक ऐसा गुण है एक साधक के जीवन में, परिवर्तन, और विशेष रूप से इस भौतिक संसार में। आध्यात्मिक संसार में भी परिवर्तन होता है, जैसे भगवान की अष्ट प्रहर लीला होती है तो परिवर्तन है, परंतु आध्यात्मिक संसार का जो परिवर्तन है वो भक्ति में वृद्धि लाने के लिए, वहां परिवर्तन योग माया के अधीन होता है। और इस भौतिक संसार में जो हम परिवर्तनशील संसार को कहते हैं, हमारे शरीर को कहते हैं, वो महामाया के अधीन हमारी भक्ति में कमतरता लाने के लिए, वृद्धि लाने के लिए नहीं। तो जब हम विलिंगनेस और अनविलिंगनेस इस मुद्दे पर हैं, राधानाथ महाराज ने जो कहा, उनके परिवर्तन की शुरुआत हुई आई एम विलिंग। तो विलिंगनेस दर्शाता है नम्रता को, अनविलिंगनेस फॉल्स ईगो। अब देखिए, ये शब्द बहुत साधारण से और छोटे हमें दिख रहे होंगे, विलिंगनेस, कि हां मैं राजी हूं, परंतु उसे अपने जीवन में उतारना, उसके लिए अहंकार को मना करना, उस अहंकार को, जिस अहंकार को हमने जन्म जन्मांतर तक हां कहते आए हैं, उस अहंकार को मना करना। यदि हम ये कहें कि कोई व्यक्ति किसी से शादी रचाए हुए है और बहुत जन्मों से शादी रचाए हुए है, कई जन्मों से शादीशुदा है, और फिर उसे कहा जाए अब तलाक दो, तो बहुत मुश्किल है। और वो भी ऐसी शादी जहां पर बहुत प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है, कोई कटुता नहीं है, कोई कठोरता नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। तो हमारा अहंकार के साथ जो विवाह हुआ है इतने जन्मों से, नम्रता का अर्थ क्या है? अब उस अहंकार को तलाक देना। जैसे मुसलमान धर्म में होता ना, 3 बार कहो तलाक तलाक तलाक, सब धर्मों में देखो 3 बार कहा जाता, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, एव केवलम केवलम, 3 बार। क्योंकि कलयुग में 1 बार कहने से सुनने से, इसलिए वो 3 बार जो बीवी है सुनना चाहती, 3 बार तुम कहो तलाक, तब जाकर तलाक होगा। तो वैसे हमारा अहंकार 1 बार बोलने से वो विश्वास नहीं करता, मुझे छोड़ोगे, मुझे, मैं जो खिला पिला रहा हूं इतने जन्मों से तुम्हें। क्योंकि इस भौतिक संसार में जब हम आए, आत्मा का भरण पोषण कौन कर रहा है? केयर टेकर मेंटेनर कौन है आत्मा का, बद्ध जीव आत्मा का? अहंकार। तो वही अहंकार कहता है इतने जन्मों से मैं जो भरण पोषण तुम्हारा कर रहा हूं, तुम मुझे अब तलाक दोगे, और वो भी किसके लिए? नम्रता के लिए। तो विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, अगर इसके हम उदाहरण लें, तो ज्वलंत उदाहरण ये दो हैं, अर्जुन दुर्योधन, दोनों क्षत्रिय, दोनों के अंदर क्षत्रिय भाव। ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवत गीता सुनने के पश्चात वो अपना अब क्षत्रिय भाव, जिसके अंदर शौर्य, और कई बार शौर्य को कोई व्यक्ति अहंकार की गलत फहमी समझ बैठता है, नहीं। तो भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन की नम्रता दिखती है, कि अर्जुन तुरंत रेडी हो गए, विलिंगनेस यहां पर अर्जुन की। और दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाकर खुद गए भगवान। दोनों में अंतर देखिए, अर्जुन भगवान के पास गए और यहां पर भगवान दुर्योधन के पास गए शांति दूत बनकर, और दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम रखो हस्तिनापुर, केवल 5 गांव, गांव कोई शहर भी नहीं मांग रहे थे, गांव दे दो इन पांडवों को, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा मैं, किसने कहा? दुर्योधन ने कहा। सुई की नोक जितनी भूमि, इसे कहते हैं शुद्ध अहंकार। सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, पांच गांव तो दूर की बात है, भूल जाओ। और इतना ही नहीं, इतना अहंकार दुर्योधन का कि जो शांति दूत बनकर आए उनको बंदी बनाओ, बंदी बनाओ इनको। तो यहां पर अनविलिंगनेस, दुर्योधन का जो इतना कूट कूट कर भरा हुआ, तो सोचो जो इस रॉ मटेरियल से बना हुआ है दुर्योधन, उसके अंदर कहां परिवर्तन की कोई आशा रहेगी, कहां परिवर्तन की आशा रहेगी। इसलिए कृपा हमें तभी प्राप्त होती जैसे अर्जुन को प्राप्त हुई। कृपा कब प्राप्त होती है? जब हम स्वीकृति देते हैं स्वेच्छा से, प्रेम से, कि हां मेरे जीवन की बागडोर अब आपके हाथ। इसे कहते हैं विलिंगनेस, परिवर्तन की शुरुआत। हमारे एक हाल ही के ब्रह्मचारी क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, मैं जब राधानाथ महाराज का पर्सनल सर्वेंट था तो एक भक्त बहुत, उनसे मुझे प्रेरणा आज तक मिलती है, रोहिणी कुमार प्रभु। तो रोहिणी कुमार प्रभु उस समय वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा करते थे, अब तो वो गृहस्थ हैं। तो राधानाथ महाराज, वो गृहस्थ बनने के बाद राधानाथ महाराज बहुत समय उनको देते थे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे कमरे के अंदर। मैं बाहर बर्तन वगैरह घिसता रहता था और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे मैं बाहर सोचता रहता था क्या गुफ्तगु चलती रहती है। तो धीरे धीरे ये जो प्रश्न मुझे अंदर उठने लगा कि इतनी कृपा ये भक्त को क्यों मिल रही है इतनी, फिर आगे चलकर मुझे उसका राज पता लगा। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, कि रोहिणी कुमार प्रभु, उनको उस समय कोई गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा नहीं थी, राधानाथ महाराज ने उनको बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूं कि आप गृहस्थ बनो। तो यहां पर विलिंगनेस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कारण उनको बताए होंगे, दिए होंगे, तो सबसे पहले उन्होंने स्वीकृति दी, ठीक है आप अगर कह रहे हैं, आप अगर ये आदेश दे रहे हैं तो मैं ये स्वीकार करता हूं। केवल इतना ही नहीं, राधानाथ महाराज ने कहा कि मैंने ऑलरेडी एक सिलेक्ट की है स्त्री आपके लिए भक्त। तो बिना पूछे बिना देखे बिना जानकारी लिए उन्होंने कहा जो भी आपने सिलेक्ट किया मैं उनसे करूंगा। अब देखिए, गुरु के सामने ऐसी शरणागति, कई बार ऐसी शरणागति 64 माला करने से भी ज्यादा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपको पूरा जीवन बिताना है और ऐसे मामले जो होते हैं कि जीवन साथी कौन होगा मेरा, वो जीवन साथी कौन होगा, ये अक्सर हम खुद चयन करना चाहते हैं, भाई मेरा चॉइस होना चाहिए। आजकल अगर मां बाप चॉइस कर कर दें, आप तो पिछड़े हुए जमाने के हो, आपको क्या पता चॉइस किसे कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने वो विलिंगनेस तुरंत महाराज के सामने, तो उनको फिर आगे चलकर जो कृपा प्राप्त हुई, तो मैं वो देख रहा था, मैं उसका थोड़ा मूल्यांकन कर रहा था कि शरणागति जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। शास्त्रों में ऑब्जेक्टिवली शरणागति के विषय में बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए गए, परंतु हमारे व्यक्तिगत गुरु शिष्य रिश्ते के बीच में एक सब्जेक्टिव शरणागति आती है, और बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां लगता है कि क्या वो सब्जेक्टिव शरणागति मेरी आ रही है कि नहीं। इसलिए भगवद गीता, तीन लोगों ने भगवद गीता का श्रवण किया, तो ये जो तीन लोगों ने भगवद गीता का श्रवण किया, मेरे अनुसार थ्री टाइप्स ऑफ हियरिंग, अर्जुन टाइप ऑफ हियरिंग, संजय टाइप ऑफ हियरिंग, धृतराष्ट्र टाइप ऑफ हियरिंग, तीनों ने भगवद गीता का एक साथ श्रवण किया, अर्जुन ने, संजय ने और धृतराष्ट्र ने। अर्जुन के भगवद गीता श्रवण करने का परिणाम क्या था? इमीडिएट चेंज। ये अर्जुन के भगवद गीता श्रवण करने का परिणाम। संजय के श्रवण करने का परिणाम हेल्पलेस, क्योंकि किसकी सेवा में संजय थे? धृतराष्ट्र की सेवा में। हालांकि आंतरिक रूप से संजय वो भगवान के शरणागत भक्त, और उन्होंने धृतराष्ट्र की सेवा खाली एक औपचारिकता से की। तो कई बार हमारी सिचुएशन संजय की तरह हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है संजय की सिचुएशन समझना, कि बदलाव हमारे अंदर हम लाना चाहते हैं, हमारी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, पूर्ण शरणागत होना चाहते हैं, परंतु कई बार हमारी स्थिति हेल्पलेस जिसको कहते हैं, वो स्थिति में हम रहते हैं। कम से कम जो अंतिम श्रवण का एग्जाम्पल है उससे तो अच्छा है। धृतराष्ट्र कौन सा है? कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज एट ऑल। तो अब देखिए, जब हम शरणागति और गुरु के प्रति शरणागति, जैसे हाल ही में हम सैटरडे को राधानाथ महाराज का वीडियो लेक्चर लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से पिछले एक महीने से, एक महीना हो गया, चार पांच लेक्चर हो गया। एक कारण ये लगाने का, मुझे कई भक्त पूछते रहते थे, राधानाथ महाराज नासिक क्यों नहीं आते? तो एक भक्त मुझे जो बार बार पूछते, मैंने उनको कहा एक बार हाल ही में, प्रभु राधानाथ महाराज आ रहे हैं सैटरडे को, तो बहुत एक्साइट हो गए। अच्छा, हाँ आइए आइए, आप सुबह आइए, राधानाथ महाराज आ रहे हैं। वो आए, कहाँ है? मैंने कहा है ना, देखो अभी चालू हो गए, उनका प्रवचन चालू होने वाला। ये थोड़ी है, मैंने ये थोड़ी मतलब ये कौन है? तो गौर करने लायक बात है कि यदि हमारे गुरु व्यक्तिगत रूप से वपू उनका यहां आए, क्योंकि हमारे कौन है वो, संजू मेवानी, वो शायद एक सैटरडे को या संडे को कोई आए थे, तो उन्होंने महाराज की आवाज सुनी, पूरे स्पीकर पर महाराज की आवाज चल रही थी, तो उनको इतना वो एक्साइट हुए कि अरे महाराज आए हुए और हमको पता ही नहीं, और इतने कम भक्त क्यों हैं? उनका क्वेश्चन क्या था, महाराज लेक्चर दे रहे हैं और इतने कम भक्त क्यों हैं? तो कई बार हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, हम कब आएंगे मंदिर में, जब वो पर्सनली आएंगे। और कई बार उसके पीछे मेंटालिटी क्या होती है कि वो देख लें कि मैं आया हूं। वो देख लें कि मैं आया हूं। इसे वाणी सेवा नहीं कहते। यदि हम वास्तविक रूप में हमारे गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं वाणी सेवा। अब देखिए, वपु सेवा और वाणी सेवा में अंतर क्या है कि मान लो कि हम कोई बहुत या हमारे गुरु महाराज को घर पर बुलाएं, तो वपु सेवा क्या है कि हम उनको कुछ प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, तो जो हमको पसंद है वो प्रसाद अर्पित करना, ये वपु सेवा है। और वो जो डाइट बताते हैं हमको कि मुझे ये डाइट ये खाना है, वो बनाकर उनको खिलाना, इसको कहते हैं वाणी सेवा। कैसे इसमें वाणी सेवा आ गई, क्योंकि पहले हमने उनसे सुना, पहले हमने उनसे क्या सुना कि उनको क्या पसंद है। तो इसलिए अक्सर जब हम क्या चाहते हैं और उसे जब अर्पित करते हैं, हाँ वो भी एक अच्छा स्तर है, कम से कम कुछ अर्पित तो कर रहे हैं, परंतु जब हम श्री गुरु के मुख से श्रवण कर कर फिर उसे अर्पित करते हैं गुरु महाराज को, उसे कहते हैं वाणी सेवा। इसलिए उसमें सेवा लगाया गया है। जैसे पिछली बार हम इस पर चर्चा कर रहे, सेवा शब्द पर चर्चा कर रहे थे ना, कि इस्कॉन में आने के बाद ये सेवा शब्द समझ में आता है। पहले तो काम किया करते थे, यहां पे तो सेवा बोलते हैं लोग, और वो भी हर प्रकार की सेवा, प्रसाद भी सेवा है। यहां पे तो आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, वो भी सेवा कर रहे हो। ये माजरा समझ में नहीं आता। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसके पीछे एक पास टाइम है, प्रसाद सेवा, इसके पीछे एक पास टाइम है। सरस्वती ठाकुर, उनके मठ में एक व्यक्ति आए और उनको रसगुल्ला ला कर दिया सरस्वती ठाकुर के शिष्य ने। तो रसगुल्ला खा रहे थे, सरस्वती ठाकुर ने कहा लीजिए रसगुल्ला लीजिए, और फिर उन्होंने पूछा सो आर यू एंजॉइंग द रसगुल्ला और इज कृष्णा एंजॉइंग यू। तो अब देखो कंफ्यूज हो गई कि इसका आंसर कैसे देंगे, और वो भी सरस्वती ठाकुर डायरेक्टली पूछ रहे आर यू एंजॉइंग द रसगुल्ला और द रसगुल्ला एंजॉइंग यू, ऐसे पूछा। आई डोंट नो What to say? तो उनका पॉइंट ये था कि एक प्रगत भक्त, वो जब भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं तो भगवान को प्रसन्नता देने के लिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ केवल प्लेट में लेकर जो हम लेते हैं उसको ही नहीं कहते। संस्कृत में प्रसाद का अर्थ है कृपा। तो भगवान की जो कृपा है उसे जब हम ग्रहण कर उसमें आनंद व्यक्त करते हुए भगवान को अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए ये जो विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, परिवर्तन के जो दो मुद्दे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने। तो अब जब हम परिवर्तन पर हैं तो ये जो चेंज, इसमें रेजिस्टेंस कहां कहां आता है कि क्यों हमारे अंदर वो अर्जुन की तरह इमीडिएट परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों इतना धीरे 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 इतना समय लग रहा है? कितने वर्ष, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने वर्ष बीत चुके, कितनी मालाएं हमने कर ली, कितने धाम यात्राएं कर ली, कितने दर्शन, कितने उत्सव, कितनी जन्माष्टमियां, कितने चरणामृत, क्यों? तो रेजिस्टेंस है उस परिवर्तन के लिए, क्योंकि ये जो कितने कितने का नंबर है ना, अगर हम इसका लिस्ट निकालें कि मैं अब तक कितने 25 जन्माष्टमी अटेंड कर चुका हूं, मैं अब तक 25 बार वृंदावन जा चुका हूं, मैं अब तक 25,000 लेक्चर सुन चुका हूं, तो इसके अगेंस्ट भौतिक संसार में अगर हम उसका लिस्ट निकालें कि हमने कितनी खुद की जन्माष्टमियां मनाई है, कितने खुद के उत्सव मनाए हैं, तो उसका जो लिस्ट है वो केवल 25 का नहीं होगा, अनगिनत कितने जन्मों से वो सब करते हैं। ये कारण हो सकता है कि परिवर्तन में थोड़ा समय लग रहा है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस टू चेंज, इसका रीजन लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट चेंज, कि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि बदलना भी है, परिवर्तन भी लाना है। जब पहले पहले हम इस्कॉन के मंदिर में आते हैं तो तुरंत हमको कोई परिवर्तन लाने के लिए नहीं बोलता, हाँ आप आइए, अच्छा लग रहा है, आइए आप, आते रहिए, तो हमको बहुत सेफ लगता है ना? जैसे अन्य मंदिरों में है ना, बहुत सेफली लोग जाते हैं अन्य मंदिरों में, उनको डर नहीं लगता, बस इस्कॉन में कुछ महीनों सालों बाद उनको डर लगता है। तो पहले तो ज्ञान ही नहीं था कि परिवर्तन भी लाना चाहिए मंदिर में आने के बाद। तो इसलिए ज्ञान, अवेयरनेस, हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट होता है कि हाँ भाई चेंज लाना है। फिर नेक्स्ट स्टेज, डिजायर टू चेंज। हाँ, तो यहां पर रेजिस्टेंस की चर्चा हम कर रहे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ डिजायर टू चेंज। कई बार हमको ज्ञान भी हो जाता है कि हाँ परिवर्तन इन इन एरियाज में मुझे लाना है, मेरे जीवन में, मेरे लाइफस्टाइल में, मेरे हैबिट्स में, मेरे व्यू पॉइंट्स में, ये सब एरियाज में मुझे परिवर्तन लाना, ज्ञान हो जाता है, परंतु कई बार इच्छा ही नहीं, ज्ञान है लेकिन इच्छा नहीं है, है ना? कई बार हमारा मन इस प्रकार से, मन और बुद्धि में हर समय ये द्वंद्व चलता रहता है। बुद्धि क्या करती है, हमें ज्ञान प्रस्तुत करती, मन के सामने ज्ञान प्रस्तुत करती, बुद्धि बोलती है ब्रह्म मुहूर्त में उठना सेहत के लिए अच्छा है, ज्ञान है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सेहत के लिए अच्छा है, मन बोलता है सुन लिया, इच्छा नहीं है, क्या कर लेगा, अपने पास रख अपना ज्ञान, मन बुद्धि को बोलता है रख टूट। तो अक्सर ये जो द्वंद्व है बुद्धि और मन के में, ज्ञान और इच्छा, सो सिंपली लैक ऑफ अवेयरनेस और फुलफिल दैट विल नॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज, यू शुड हैव द डिजायर ऑल्सो, along with awareness there should be desire to change. Third, desire है, हाँ बदलना है, कितने संडे से ये चेंज 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 के ऊपर लेक्चर, ये टॉपिक क्यों नहीं चेंज करते? इतना चेंज बोलते हैं, टॉपिक भी तो चेंज करो। तंग आ गया मैं यहां से वहां से, कभी वो चेंज क्या करो नहीं मनाते, कभी टेंपल का मनाते, कभी इसका मनाते। तो डिजायर आ जाता है, कई बार इतनी बार सुनने के बाद करेगा क्या, और आना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता, अब डिजायर आना ही पड़ेगा। इतना कूट कूट के भर देते हैं हरे कृष्णा वाले, बेचारे दो कान है लेकिन दोनों कान में कहीं से भी बाहर निकलने नहीं देते, इधर से भी उधर से सब दरवाजे सब पर्दे भी बंद कर देते हैं। तो डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है ये हमारे जीवन में लाना, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, था ना वो चेंज के अंदर हार्ड वर्क, एच क्या है हार्ड वर्क। तो डिसिप्लिन के लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंसर्न जोन में जाना और फिर चेंज जोन में जाना, ये सब जोन्स में जाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन लाना, और कई बार हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, अवेयरनेस हो गया, डिजायर है, डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, तो वो टेस्ट है। वो टेस्ट क्या है, हमारे डिटर्मिनेशन का, हमारे कॉन्फिडेंस का। तो अक्सर होता क्या है, सब फॉलो करने के बाद जब परिवर्तन नहीं दिखता तो हमारा कॉन्फिडेंस फिर ढीला पड़ने लगता है, हमको लगता है आई डोंट थिंक आई कैन चेंज, मैंने सब कुछ कर लिया आई डोंट थिंक आई कैन चेंज। इंग्लिश में जो ये कोट है, When the going gets tough, the tough gets going. कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है हमको जो ऊपर के तीन पॉइंट्स हैं, जो लास्ट पॉइंट है, जब हम उस फेज में रहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऊपर के तीन पॉइंट्स का सहारा लेना। तो क्यों, उसके पेटेंट एक्सक्यूजेस क्या होते हैं, अब ये सारे तो रेजिस्टेंस, अब इसके पेटेंट एक्सक्यूज जो हमने इतने जन्मों से इसका लिस्ट बनाकर अपने साथ ले लेकर घूमते हैं, चाहे कोई भी योनि में हो, ये लिस्ट को छोड़ते नहीं हम। कौन से लिस्ट को, बहानों की लिस्ट को, एक्सक्यूजेस। और ये एक्सक्यूजेस के पीछे हम फिलॉसफी भी प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली एवं ही बहाने दे रहे हैं, एवं ही नहीं है, उसके पीछे फिलॉसफी भी है। तो सबसे पहला पेटेंट एक्सक्यूज क्या है, परिवर्तन नहीं लाने का, आई हैव ऑलवेज डन इट माय वे, माय वे इज द हाईवे, अदरवाइज नो अदर वे। तो सबसे पहला एक्सक्यूज ये है कि इतने टाइम से मैं जो करते आ रहा हूं, नहीं, मैं करते आ रहा हूं, करते आ रहा हूं नहीं, मैं करते आ रहा हूं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर I have never done it, Krishna, your way. Because these two combinations are there, it becomes a valid reason for me not to change. Third excuse. दैट्स नॉट माय जॉब. अरे गीता तो अर्जुन को सुनाई, मैं थोड़ी अर्जुन हूं, नाम देख लो मेरा. हाँ मेरा नाम वो नहीं है, मुझे नहीं, ये मेरे लिए नहीं है परिवर्तन. जैसे प्रभुपाद जब शुरुआत में अमेरिका में वो लेक्चर्स दे रहे थे, ये सब हिप्पीज वगैरह आना शुरू हुए थे, तो प्रभुपाद स्ट्रांगली अपना फिलॉसफी जो प्रस्तुत कर रहे थे गीता का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो प्रभुपाद कहते थे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, चैंटिंग 16 राउंड. तो बहुत से वो बैठे बैठे सोचते थे प्रभुपाद बहुत डिटरमाइंड है अपने खुद के लिए. तो बहुत समय तक उनको यही लगा कि ये जो भी बोल रहे हैं ये खुद के लिए बोल रहे हैं. तो हम भी इस फेज में रहते हैं, बहुत बार आते हैं, हम बहुत कुछ सुनते हैं शास्त्रों से, बहुत समय तक हम इस भ्रम में रहते हैं मेरे लिए थोड़ी है. अच्छा आप मेरे लिए बोल रहे थे, पहले बोलना चाहिए था प्रभु. अभी तो क्या, अभी तो बहुत टाइम हो गया, पहले बोलना चाहिए था. अच्छा मेरे लिए क्या, ओ सोचेंगे. अगला एक्सक्यूज, आई डोंट थिंक दिस चेंज विल मेक एनी डिफरेंस. आपको लगता है कुछ होगा? अच्छा 4 नियम 16 माला, आपको लगता है मंगल आरती प्रवचन उसमें आना? मुझे तो नहीं लगता है. मतलब मेरी स्थिति ऐसी है कि बहुत उसमें ताकत लगेगी आप लोगों को. और फिर फाइनली सबसे ब्रह्मास्त्र, कलयुग का जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है? अरे आप कुछ भी कर लो, टाइम कहाँ है प्रभु जी, टाइम कहाँ है, टाइम बताओ मुझे, टाइम कहाँ है, टाइम निकाल कर बताओ. तो ये जो टाइम है, कि टाइम कहाँ है. तो अब जब हम हमारे अंदर इतना रेजिस्टेंस और इतने हमारे बहाने, इसलिए हम कहते हैं वो जो श्लोक है कलेर दोष निधे राजन, कि कलयुग दोषों का सागर. केवल उतना ही नहीं, हमने उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन किया है कि बहानों का सागर भी है. केवल दोषों का सागर नहीं, बहानों का सागर. ऐसे बहाने और ऐसे ऐसे बहाने, जैसे हम ये मुद्दा कह रहे थे कि आजकल लोग इन बहानों के साथ जस्टिफिकेशन और फिलॉसफी दोनों ऐड कर देते हैं कि क्यों मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आना चाहिए. इसके लिए मेरे पास ग्रंथ है, ग्रंथ है, प्रामाणिक है वो ग्रंथ, रिव्यूज भी मुझे मिले हैं उस ग्रंथ के पीछे बहुत से लोगों के, मैं ही ऑथर हूं उसका. अब घबराइए मत देखकर, कई बार हम इस मोड में जाते हैं कि टाइम विल सिंपली चेंज एवरीथिंग इन माय लाइफ. बट व्हाट टाइम चेंजेस ऑन इट्स ओन इज सिंपली द एक्सटर्नल. हमारे चमड़ी को बदल देगा इस समय. जो एकदम सुंदर दिखने वाली है चमड़ी, समय के, काल के प्रभाव के अनुसार इसके अंदर झुर्रियां पड़ जाएंगी, परिवर्तन आएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य ने कहा सब कुछ गलने लगेगा, अंगम गलितम सब कुछ गल जाएगा, और यदि हम उस समय तक रुके रहेंगे कि हां ये मेरा शरीर गल जाएगा, मेरी चमड़ी गल जाएगी, उसी के साथ मेरा अहंकार भी गल जाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला। जैसे प्रभुपाद वो कहानी सुनाया करते थे, अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये काम वासना कब तक रहती है किसी पुरुष के अंदर। बीरबल ने कहा मरते दम तक। मरते दम तक ऐसे कैसे हो सकता? तो अकबर ने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, बीरबल ने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति 80 से भी ऊपर बूढ़ा व्यक्ति मृत छैया पर। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि आपकी जो बेटी है ना उसको साथ में लेके हम चलते हैं, मिलने चलते हैं उससे। तो उनकी नौजवान बेटी उसको साथ में लेते, और जहां पर वो लेटा हुआ था बूढ़ा व्यक्ति, घुसने से पहले बीरबल ने अकबर से कहा उसकी आंखों की तरफ देखते रहना, हम तीनों प्रवेश करेंगे, मैं आप और आपकी बेटी तीनों प्रवेश करें, देखते रहना उसकी आंखों। जैसे ही प्रवेश किया, मृत छैया पर है, कब्र में दोनों टांगे अब पहुंच चुकी है और मृत छैया पर लेटा हुआ अकबर ने देखा, न तो बीरबल की तरफ उसने देखा न अकबर की तरफ, बादशाह अकबर उसको भी नहीं देख, तुरंत आंखें टकाटक, वो अकबर की बेटी की ओर। तो यहां पर यदि कोई ये समझे कि समय के प्रभाव से मेरे जो अनर्थ हैं वो अपने आप दूर हो जाएं, लोग ये वर्ड आजकल बहुत यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं, वो जो बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, सब मशीन वगैरह जो ऑटोमेटिक, उसके अंदर भी बटन दबाना पड़ता है किसी को। तो राधा गोविंद महाराज एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे, इसको मैं कोट करना चाहूंगा कि अंधकार, यदि किसी कमरे में अंधकार है और आप केवल बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो कि समय बीतने से अहंकार दूर हो जाएगा, समय बीतने से अहंकार अपने आप दूर हो जाएगा, नहीं। तो राधा गोविंद महाराज ये उदाहरण दे रहे थे कि चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाए, जब तक कि कोई उस कमरे में जाकर बत्ती नहीं जलाता, अपने आप अहंकार दूर नहीं होने वाला। तो यदि हम इस भ्रम में हैं कि समय बीतने पर मेरे अंदर परिवर्तन आ जाएगा, नहीं, वो परिवर्तन तो बाहरी रूप से आने वाला है, चाहे उसको कितने भी रोकने का प्रयास करो। आजकल लोग उल्टा कर रहे हैं, जहां परिवर्तन लाना चाहिए वहां पर तो नहीं ला रहे, और जिस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता उस परिवर्तन को रोकने का प्रयास कर, कॉस्मेटिक तरीके से। डार्कनेस वोंट गो जस्ट बाय वेटिंग फॉर इट टू गो। तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे प्रयास करना पड़ेगा, कमरे में जाकर उस अंधकार में जाकर स्विच बोर्ड ढूंढकर। और आपने कभी अनुभव किया अचानक लाइट चली गई, घुप अंधेरा हो गया, पता ही नहीं कहां पर स्विच बोर्ड है, कैसे हम अंधों की तरह घूमते हैं अंदर। एक बार मैंने एक अपने ऊपर प्रयोग किया था। एक हमारे एयरफोर्स में एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, बहुत सुंदर तरीके से वो जो चेयर आती थी ना, वो नायलॉन के स्ट्रिंग से बनी हुई चेयर, तो वो अंधा व्यक्ति बचपन से अंधा और उसके अंदर ये टैलेंट था, वो इतने सुंदर तरीके से वो कुर्सियां बनाता था वो नायलॉन के स्ट्रिंग्स को पिरो पिरो कर एकदम सिमेट्री में। तो उसको देखकर एक बार मैं सोच रहा था कि एक अंधे व्यक्ति का जीवन क्या कैसा जीवन होगा, अनुभव करना चाहिए। तो क्या उस वो ऐसा दौर था जब हर चीज एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि अंधा व्यक्ति का एक दिन कैसा होगा, चलो अनुभव करते। तो दिन मैंने छुट्टी ली, छुट्टी लेकर अपने कमरे में मैंने पट्टी बांधी गांधारी जैसे पट्टी बांधी और मैं प्रयास कर रहा था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं एक अंधा कैसे पूरा दिन बिताएगा, उसका एक टिपिकल दिन कैसे बीतेगा उसका अनुभव करना। 12 घंटे तक मैंने ट्राई किया, जो तकलीफ से मैं गुजरा आज तक मुझे याद है कि व्हाट इट टेक्स टू लिव इन डार्कनेस, उसका प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मुझे मिला। और उसके बाद इन व्यक्तियों के प्रति मेरी सहानुभूति और ज्यादा बढ़ गई। हम कितना चीपली लेते हैं हमारी ये जो रोशनी है आंखों की, हम कितना चीपली इसको लेते हैं। एक एक चीजों को यदि हम देखने जाए इस संसार में, जैसे कि हम कल एक वीडियो दिखा रहे थे, ये महिला इसको वर्ल्ड्स अगलीएस्ट वुमन बताया गया है। इस महिला के शरीर में 1% का भी फैट नहीं है, 0% फैट। एक बहुत ही अजीब बीमारी है इस महिला की, 0% फैट। तो ये कुछ 25 साल की है और इसका वेट केवल 29 किलोज है, 64 pounds, 29 किलोज खाली वेट है इसका। तो उसका लेक्चर हम कल लगाए थे, वो बोल रही थी लेक्चर में कि उसे लोग उसके मुंह पे कहते थे कि क्यों नहीं तू मर जाती, इतनी बदसूरत है तू। लेकिन उस महिला ने वो सारे जो उसके ऊपर ताने मारे गए, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया उन्होंने, उस महिला ने, टर्निंग क्रिटिसिजम्स इंटू अपॉर्चुनिटीज। तो जो हमें उपलब्ध है हम जब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम हमारे जीवन का जो अंधकार है, हम ही अंधकार के कारण हैं और हम ही रोशनी ला सकते हैं। दोनों का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर ही है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी ऑफ 3 लंच बॉक्सेस। भूख लग रही है? तो ये कहानी 3 एम्प्लॉयज की है जो घर से अपना लंच बॉक्स लाए करते थे और तीनों उनका जो लंच टाइम होता था, लंच टाइम के समय अपना लंच बॉक्स खोलकर साथ में बैठकर खाते थे। तो रोज उनका यह कार्यक्रम चलता, लंच टाइम के समय तीनों बैठकर अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर लंच बॉक्स में क्या है शेयर करते और खाते। तो महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख, अब 29th महीने की 29 तारीख, और लंच बॉक्स उन्होंने खोला, तीनों ने लंच बॉक्स खोला। तो खोलने से पहले सबसे पहले व्यक्ति ने कहा कि यदि आज फिर से पालक की सब्जी हुई ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दूसरे ने कहा यदि मेरे लंच बॉक्स में आज फिर से कद्दू की सब्जी हुई ना मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तीसरे ने कहा यदि आज मेरे लंच बॉक्स में फिर से आलू की सब्जी हुई मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। क्या समझ में आया आपको इससे? कि एक तारीख से 29 तारीख तक रोज उनके लंच बॉक्स में वही सब्जी आती थी, पालक, कद्दू और आलू। कई बार हमारे ब्रह्मचारी भी बोलते हैं आज फिर से खिचड़ी बनी ना सेंटर चेंज कर लूंगा। तो कम से कम सेंटर ही चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अब तीनों ने ये प्रण ले लिया कि अगले दिन 30 तारीख है। उन्होंने खोला और पहले वाले ने खोला पालक की सब्जी निकली, दूसरे वाले ने खोला कद्दू की निकली, तीसरे वाले ने खोला आलू की निकली। बस हो गया, कल महीने की आखिरी तारीख है, आखिरी वार्निंग। 30 तारीख आई, लंच का टाइम आया, लंच बॉक्स खोला, लंच बॉक्स खोलने से पहले यदि आज भी पालक की, कद्दू की, आलू की सब्जी निकली तो, और वही हुआ, पालक की सब्जी निकली पहले लंच बॉक्स में, दूसरे में कद्दू की, तीसरे में आलू की, तीनों ने आत्महत्या कर ली। मार डाला अपने आप को। तो अब उनका फ्यूनरल चल रहा है, फ्यूनरल, एक साथ फ्यूनरल हुआ अभी, तो फ्यूनरल चल रहा है और तीनों पत्नियां उनकी वो विलाप कर रही। तो पहली पत्नी कहती है काश वो मुझे बोल देते कि उनको पालक नहीं पसंद, मैं कोई और सब्जी बनाती। दूसरी ने कहा काश वो मुझे बोल देते उनको कद्दू नहीं पसंद, मैं कोई और सब्जी बनाती। लेकिन जो तीसरी पत्नी थी वो विलाप नहीं कर रही थी, वो कंफ्यूज्ड थी। तो बाकी दोनों ने पूछा तू कंफ्यूज्ड क्यों है? मैं कंफ्यूज्ड इसलिए हूं कि वो खुद अपना लंच बनाते थे, और वो खुद भरते थे टिफिन के अंदर, खुद लंच बनाते थे, खुद टिफिन में भरते थे। लेसन क्या है? वी कुक अवर ओन लाइफ एंड वी फिल द टिफिन ऑफ अवर ओन लाइफ एंड वी कमिट सुइसाइड। बहुत गहरा लेसन है। Cooking our own lunch, English में एक और quote है, there are no free lunches, so we all cook our own lunch। जैसे एक सरकारी ऑफिस में बॉस को एम्प्लॉई रोज 4:30 बजे नहीं दोपहर के समय बोलता सर मुझे घर जाना है। बॉस क्यों जाना है? मेरी पत्नी खाना नहीं खाएगी नहीं तो, अच्छा जाओ जाओ। तो दूसरे दिन फिर से मुझे घर जाना है, पत्नी खाना नहीं खाएगी, अच्छा जाओ जाओ। तो ऐसा एक हफ्ता हुआ तो बॉस बहुत इंप्रेस हो गया। बॉस ने पूछा, आपकी पत्नी बहुत पतिव्रता है, आपके खाए बिना खाती नहीं? बोले नहीं नहीं, मुझे बनाना पड़ता है। दरअसल बात ये है, तो मुद्दा ये है कि हम सब को अपना अपना लंच बनाना है, अपने जिंदगी का लंच हम सबको बनाना है, और हम सब अपने इच्छाओं के कर्मों के अनुसार हम अपने जीवन का कुकिंग करते हैं। और टिफिन क्या है? टिफिन जो हम अलग अलग योनियों में वो कुकिंग जो किया है ना, वो अलग अलग योनियों में टिफिन में भर भर के सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है? टिफिन है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या हम भरते हैं? जो हमने जीवन भर कुकिंग किया है। तो जो हमने कुकिंग किया है, जो हमने उस टिफिन में भरा है, जब हम ऑफिस में जाकर लंच टाइम में खोलेंगे तो क्या मिलेगा उसके अंदर? वही आलू की सब्जी, वही कद्दू की सब्जी, वही पालक की सब्जी, वही सब मिलने वाला। तो लेसन क्या है 3 लंच बॉक्सेस की स्टोरी से? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन चेंज। इसलिए राधानाथ महाराज ने वो जो 3 वर्ड्स कहे जब वो इजिप्ट में थे और वहां पर उनको जो वो आकाशवाणी सुनाई दी, गो टू इंडिया, उनको ये 3 वर्ड सुनाई दिए, गो टू इंडिया, और उन्होंने अपनी तरफ से 3 वर्ड्स कहे, आई एम विलिंग। तो ये है परिवर्तन की शुरुआत। अब यदि हम अनविलिंगनेस, विलिंगनेस, फॉल्स ईगो और ह्यूमिलिटी को इस एग्जाम्पल के संदर्भ में लें, तो फॉल्स ईगो क्या है? जानता है कि कुकिंग उसने किया है, जानता है कि टिफिन के अंदर भी उसने जो कुक किया है उसी ने भरा है उस टिफिन के अंदर, बट जब टिफिन खोलता है तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये मैंने बनाया। तो अहंकार क्या करता है? शिकायत। अहंकार हर समय हमें कौन से काउंटर पर खड़ा रखता है? कंप्लेंट काउंटर। जैसे कहते हैं ना, सम पीपल दे सिंपली स्टैंड एट द कंप्लेंट काउंटर ऑफ देयर लाइफ। हर समय उनके जीवन में शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत। जैसे बहुत बार प्रभुपाद के पास लोग आते, इस्कॉन तो ठीक है लेकिन ये कृष्ण ही खाली क्यों, बाकी क्यों नहीं? भगवत गीता में आप हर समय कृष्ण कृष्ण क्यों कहते हैं? तो कृष्ण ने सुनाई है गीता, बीच में कोई और थोड़ी आए थे श्लोक बोलने के लिए। कई बार ये तो कई जो होते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा उनको प्रस्तुत कर दो, उसके अंदर भी कि आपके इस्कॉन के कार्यक्रम तो ठीक हैं लेकिन आप लोग ये 16 माला क्यों बोलते हैं? कम नहीं हो सकता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछ, 16 ही माला क्यों, कम क्यों नहीं? प्रभुपाद को जब पूछा गया तो प्रभुपाद ने बोला, मेरे को भी यही प्रश्न है, 16 ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? एक प्रश्न कभी पूछा नहीं हमने, ज्यादा क्यों नहीं? हर समय तो जब पगार मिलती है तब बॉस को ये प्रश्न पूछते हैं, हाँ 50,000 ही क्यों, इतना क्यों दे रहे हैं आप? अरे कम दीजिए थोड़ा। नहीं, इतना ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? तो हमारे ये जो क्यों, कैसे, कहां, कब, इसके प्रश्न जो हैं वो यहां पर अगर अहंकार से वशीभूत हैं तो हर समय शिकायत काउंटर पर, कंप्लेंट काउंटर। ह्यूमिलिटी का अर्थ है चेंजिंग द कुकिंग, कि यदि ये कर्म करने से मेरे जीवन के अंदर ये परेशानी कठिनाई आ रही है तो लेट मी चेंज द मेन्यू ऑफ माय लाइफ, लेट मी चेंज द मेन्यू कार्ड ऑफ माय लाइफ, लेट मी चेंज। और मेन्यू कार्ड चेंज करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि मैं आलू का परचेजिंग करूंगा लेकिन आलू की सब्जी नहीं बनाऊंगा, अरे भैया तुमने जो परचेज किया है, तुमने जो काटा है, तुमने जो कढ़ाई में डाला है वो तो आलू है। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता आलू, तो डाला क्या है? तो प्रश्न ये है कि हम हमारे जीवन के रॉ मटेरियल्स कहां से ला रहे हैं, शॉपिंग कहां कर रहे हैं हमारे जीवन के मेनू कार्ड के लिए, वो डिसाइड करेगा कि हमारे टिफिन में क्या जाएगा। तो यदि टिफिन का आइटम बदलना है तो हमको रॉ मटेरियल बदलना है, शॉपिंग की जगह बदलनी है। इसको कहते हैं चेंज, एंड दैट ब्रिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंटिंग जो वर्ड आया था, देन वी कैन कॉम्प्लीमेंट ऑन दैट। ह्यूमिलिटी अगेंस्ट फॉल्स ईगो। ह्यूमिलिटी मीन्स साइन ऑफ लाइफ। एक बहुत सुंदर और स्ट्रांग कोट हाल ही में मैं इसके कनेक्शन में आया, शरीर में नरमाई या जीवित रहने का लक्षण है, वरना अकड़ तो केवल मुर्दों में होती है। कई लोग अकड़ के रहते हैं, एकदम कड़क अकड़ के जीते हैं, अकड़ के बोलते हैं, और उनको उसमें बहुत गर्व महसूस होता है, मेरे अंदर कितनी अकड़ है देखो, कोई मुझे नरमा नहीं सकता, कितनी अकड़ है मेरे अंदर। तो किसका लक्षण है? जब व्यक्ति मुर्दा बन जाता है तो सब कुछ अकड़ जाता है, फिर उसके अंदर बहुत ही नेचुरल स्वाभाविक तरीके से अकड़ दिखेगी आपको। तो अकड़ मुर्दे का लक्षण है, नरमाई जीवन का लक्षण है। जब तक अंदर आत्मा है तब तक हमारे चर्म के ऊपर, हमारी चमड़ी के ऊपर नरमाई दिखेगी। तो इसलिए ये सारे जो उदाहरण दुर्योधन, इसलिए भगवान ने अर्जुन को जो कहा कि ये जो सारे खड़े हैं यहां पर अकड़े हुए कौरव, ये सब मुर्दे हैं क्योंकि मैंने मार दिया इनको। तो अर्जुन जो इतना विलाप कर रहे थे कि ये मर जाएंगे, फिर इनकी पत्नियों को क्या होगा, फिर वर्ण संकर, फिर ये समाज वो सब, कृष्ण ने कहा ये सब मुर्दे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर अकड़ है, कोई यहां पर नरमाई नहीं दिखाया मैं जब शांति दूत बनकर गया। इसलिए हमारे जीवन में यदि हम हमारे जीवन को जीवित करना चाहते हैं, अब ये बात थोड़ी आपको अलग लग रही होगी, जीवन को जीवित करना चाहते हैं या जीवन को जीवित रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर नरमाई, अर्थात नम्रता। नम्रता अर्थात विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स चेंज, नहीं तो अकड़। इसके विपरीत एक और टर्म अगर मैं यूज करूं, इसको कहते हैं जिंदा मुर्दा। जिंदा मुर्दा अर्थात वो कौन सा श्लोक है, हाँ कैसे शुरू है, अप्राणस्य इह देहस्य, आगे क्या है, मंडनम लोकरंजनम। तो यदि कोई व्यक्ति के अंदर से प्राण चले गए, अप्राणस्य इह देहस्य, और उसको सजाओ, मंडनम लोकर, उसको सजाकर, पाश्चात्य देश में होता है उसको अंडरटेकर्स बोलते हैं, वो लोग उनका प्रोफेशन है मुर्दों को सजाना। एक व्यक्ति से मैं मिला जो अभी इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो व्यक्ति का पहले प्रोफेशन था मुर्दों को सजाने का। वो व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, वो भक्त बोल रहे थे कि उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी क्योंकि दिन भर इतने मुर्दों को सजाना है, स्माइल देना है, लास्ट में उनको मुर्दों को स्माइल देना पड़ता है। क्यों, क्या कि क्योंकि वो फ्यूनरल में जो आ रहे हैं उनको दिखना नहीं चाहिए कि जो सच्चाई है मृत्यु की सच्चाई वो दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए वो लोग आते भी हैं वहां पर, सजे हुए मुर्दे को देखते हैं और देखते हैं मुस्कुरा रहा है तो बोल के जाते कि तुम हंसते हुए गया देखो, उसको टांके मार मार कर वहां पर वो, क्योंकि अकड़ आ जाती है ना, तो टांके मार मार कर उसके अंदर वो हंसी लानी पड़ती है। तो वो ये भक्त बता रहे थे कि उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी क्योंकि ये सब मुर्दे घूमते रहते थे सपनों में यहां वहां। तो ये श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई मुर्दे को सजा रहा है, कितना भी सजाओ उस मुर्दे को, कोई व्यक्ति कितना भी सजाए, क्या हासिल होने वाला है, क्या सुंदरता उसके अंदर और कितने समय तक वो सुंदरता रहेगी, यदि रहेगी भी तो कितने समय तक। फिर जो सड़ने लगता है वो शरीर, पहले से सड़ा हुआ है, अंदर आत्मा है वो उसको ठीक से बर्दाश्त कर रहे हैं लोग इस सड़े हुए शरीर को, क्योंकि आत्मा की वजह से अंदर वो आत्मा चला जाए, रात को आत्मा थोड़ा स्लीप मोड में चला जाता है तो सुबह देखो कितनी बदबू बाहर आती है। तो परमानेंटली शटडाउन हो जाए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उस मुर्दे को, फिर उसको व्यक्ति भी नहीं बोलते हम अपना, उसको नाम भी नहीं लेते, उसको शव बोलते हैं, शव, शव का अंतिम संस्कार, डेड बॉडी बोलते हैं उसको फिर। तो यदि ऐसे मुर्दे को सजा कर रख दिया जाए, अर्थात हमारा जो अहंकार है वो उस अकड़ की पहचान है, वो उस मुर्दे की पहचान है, और पूरा भौतिक संसार उसको सजाने संवारने में लगा हुआ है। हमारे जो अकड़ वाले मुर्दे को सजाने संवारने में लगा हुआ, इसलिए यहां पर हमने जो आज चर्चा की कि परिवर्तन जब तक हम वहां से शुरुआत नहीं करेंगे, ग्रासरूट लेवल पर जहां से भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ अहंकार से, जो सबसे सूक्ष्म है सब भौतिक तत्वों में, सबसे सूक्ष्म तत्व है अहंकार, और ये अहंकार जो है यही आत्मा और शरीर का चेन है बीच का, छिंदंती, इसको काटना है, और उसको काटने के लिए नम्रता यही एकमात्र शस्त्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले सेटिंग में परिवर्तन के और कौन कौन से अलग अलग रूप हैं इसकी चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न? हरी वो, हाँ जी, बिल्कुल नहीं लगता। प्रश्न ये सुना आप लोगों ने कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ मैं स्वीकृति देता हूं अपने अंदर परिवर्तन लाने की, तो फिर उसके पश्चात कैसे जिया जाए। तो जब हम स्वीकृति दे रहे हैं तो हम अपने से ऊपर किसी व्यक्ति को शरणागत हो रहे हैं, हम किसी सिद्धांत को शरणागत हो रहे हैं, हम किसी लाइफस्टाइल को शरणागत हो रहे हैं, हम किसी के मत को शरणागत हो रहे हैं। तो अब जैसे अर्जुन ने कहा, आपका ये जो प्रश्न है उसका उत्तर अर्जुन ने अपने श्लोक में दे दिया है। अर्जुन ने क्या भगवान से कहा? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं क्या करूंगा? अभी आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। अभी आप मुझे अगर कहोगे अर्जुन गांडीव उठा युद्ध कर, मैं वो करूंगा। आप अगर कहोगे अर्जुन गांडीव रख घर चलते हैं, तो मैं वो करूंगा। तो आई एम विलिंग के पश्चात वी हैव टू फॉलो, जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, दाय विल बी डन नॉट माय, दाय विल बी डन। तो जो उनका विल है, जो विलिंग का अर्थ है उनके विल को पालन करना। और उनका विल कैसे समझ में आएगा, अब ये प्रश्न है। उनका विल समझ में आता है हमको ग्रंथों के द्वारा, उनका विल हमको समझ में आता है। जो अगर ये भी समझ में नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि भगवान भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद वाणी, तो वो बताते हैं हमको कि हमको कैसे करिष्ये वचनम तव करना है। यही उद्योग रह जाता है कि जो हमको भगवान और भगवान के प्रतिनिधि सही राह पर चलने का आदेश देते हैं उसका मैं पालन करूं। जय श्री प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। आज का जो ब्रेकफास्ट प्रसादम है वो हमारे अर्च विग्रह माता जी इन्होंने स्पॉन्सर किया है, उनकी बहू और उनकी जो पोती भक्ति का, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उनको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
इस गृह शिक्षा अष्टकम प्रभु की जय।